एक्शन टेरियन है कि भाई वहां पर कुछ ग्लिचेस आ गए,
ग्लिचेस आ गए थे, कंप्यूटर ग्लिचेस, यस। अच्छा, अब ये जो लोग हैं जिनको के चेंज करना पड़ा, वो जो चेंज इलाके थे, मिसिसागा ईस्ट कुक्सविल जो था एट मेरी फिक्स कैथोलिक स्कूल 486 पैल्सली बुलेवार्ड वेस्ट, उनको कहा गया कि भाई आप कैश्मीर एवेन्यू पब्लिक स्कूल जो 2455 कैश्मीर एवेन्यू पे है उधर जाएं। इसी तरह ट्रोनो सेंटर एट 101 बे स्ट्रीट ओपरा प्लेस जो था उनको कहा गया 8887 बे स्ट्रीट पे, उनको कहा कि आप YMCA सेंट्रल जो कि 20 ग्रोवनर स्ट्रीट पे है वहां पे आप जाएं। इसी तरह ट्रोनो सेंटर जो ओपरा प्लेस 887 बे पे था, उनको भी कहा गया कि भाई आप यहां से मूव करके दूसरी तरफ जाओ। ट्रोनो सेंटर एट कॉलेज व्यू अपार्टमेंट्स 423 यांग स्ट्रीट जो था उसको कहा जी कि आप ट्रोनो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर 55 गुड स्ट्रीट जो है वहां पे जाएं। तो ये काफी सारी चेंजेस आए, लेकिन बहरहाल एनीवेज हम आपको बताना चाहते हैं अभी 6 बजे हैं तो 9 बजे तक वोटिंग अभी खुली हुई है, तो यू स्टिल हैव 3 आवर्स, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई आप जा सकते हैं।
और जाने से पहले आप एक चीज बस ये देख लें कि आप अगर आपके पास कार्ड है अपना
जी,
पोलिंग कार्ड जो है अगर आप मेल में आपके पास आया है तो यू कैन ओनली टेक दैट विद एन आईडी, फोटो आईडी मींस कि ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह। अगर आपके पास नहीं है वो कार्ड तो आप जो है अपने ड्राइवर्स लाइसेंस से भी कर सकते हैं, अगर वो ड्राइवर्स लाइसेंस भी नहीं है तो आपके पास 2 पीस ऑफ वो होनी चाहिए कि सर्विस बिल्स, चाहे टेलीफोन का बिल है या किसी और इंश्योरेंस का बिल है, कोई सी भी बिल्स हैं वो आप ले आके दिखा दें उसको, तो दे'ल लेट यू वोट।
अच्छा, ये आमिर जरा हमारी वेबसाइट दिखाओ, ये जो सारी डिटेल्स अभी माजिद भाई ने बताई हैं ये आज हमारी लीडिंग स्टोरी है हमारी वेबसाइट पर, ये देखें, फॉलो ऑन्टेरियो इलेक्शन 2022 स्पेशल विद ई आवाज टुडे, इसके अंदर डिटेल्स हैं कि जिस वक्त आप वोटिंग के लिए, ये हमारे जो आज का शो है उसकी तो डिटेल्स हैं ही हैं, लेकिन इसके अंदर वो डिटेल्स भी हैं इस स्टोरी के अंदर कि जिस वक्त आप वोट के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए।
Exactly.
तो अगर आप ये हमारी वेबसाइट पे जाके भी ये स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट डू यू नीड टू बी देयर, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कैनेडा जो है वो हमने जो 3 महीने पहले बात मैंने और माजिद भाई ने कह दी थी कि कुछ लोग कह रहे थे शायद 3% को टच ना करे, हमने कहा था जी 3% को टच करेगा।
Exactly.
और कुछ लोग कह रहे थे हाँ शायद एंड ऑफ द ईयर करेगा, हमने कहा था कि नहीं जल्दी कर जाएगा इंटरेस्ट रेट जो है बैंक ऑफ कैनेडा का 3% को। एग्जैक्टली वही बात आज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कैनेडा जो है पॉल बॉर्डी, उन्होंने आज कही है, ये स्पीच दे रहे थे गैटनो के अंदर और उधर इन्होंने कहा जी कि हमको 2% से ऊपर यानी कि 3% तक लेके जाना पड़ेगा अपना जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट है, उसकी वजह यह है कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो 6.8% को टच कर रही थी इन अप्रैल।
Exactly.
और ये हौले हौले ऊपर जा रही है, विच इज 31 ईयर ऑन ईयर राइज। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टेंटली गैस और ग्रोसरीज की प्राइसेस जा रही हैं, तो हमें लगता है कि वी कैन गो बियॉन्ड दैट। तो
July 13th को तो नेक्स्ट वो जी, है जी, इनकी मीटिंग July 13th को, उसके बाद फिर सितंबर में होगी,
yes,
फिर एक दिसंबर में
हाँ जी, तो बाय दैट टाइम मुझे लगता है कि 3 से भी ये ऊपर जाएगी, और हम आज ही कह रहे हैं विच इज यू नो 2nd of June, तो ये ऊपर जाएंगी प्राइसेस, तो इन्होंने भी इसी चीज का जो है आज जिक्र किया है। अफगानिस्तान के कुछ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भाग के कनाडा के अंदर आए थे, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, लेकिन फिर भी अब अफगानिस्तान के कुछ लोग जो यहां पे भाग के आए हैं वो कह रहे हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट को और कुछ भी करने की जरूरत है। यहां पे नाहीद फरीद एक हैं जो कि जो जर्नलिस्ट गिल्ड को करती थी, रिप्रेजेंट करती थी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बुरी है, तो इसलिए आप जो है कुछ और करें। ये जो मीटिंग आज हो रही थी इसको लीड कर रहे थे इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जो है हमारे, और उन्होंने भी अनाउंस किया था कि हम इनकी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनको अब हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं या कि कुछ और एरियाज में चले गए हैं, दे आर वेटिंग वर्क ने,
वो स्पेशली वो लोग हैं जिन्होंने कनाडा के फोर्सेस की मदद की थी
हाँ जी, तो वो कहते हैं जी हम उनको ला रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके ऊपर हम बड़े हाई लेवल के जो ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये हाई लेवल पे पता नहीं क्या काम हो रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है कि प्रोसेसेस जो हैं वो जल्दी चलते नहीं हैं। तो बहरहाल ये नाहीद फरीद ने कहा है जी कि अगर आप इनको जल्दी से लेकर आएंगे तो उसमें जो है इनका ही फायदा है, क्योंकि लोग जो हैं वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो अगर जल्दी जल्दी आप उनको वीजा एटलीस्ट दे देंगे तो वो आपको इधर कंट्री में एक दफा आ जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी। तो अब देखेंगे ये इसके ऊपर क्या करेंगे। आज जनाब हो गया है पूरा एक साल, अगर आपको पता हो कि जो अफसल फैमिली के चार बंदे जिनको के एक 19 ईयर ओल्ड लड़के ने मार दिया था, तो उसको आज जो है उनके भाई जो है सलमान साहब के भाई उमर अफसल, वो कह रहे थे कि इस ट्रेजिक जो वाकया हुआ था उसमें हमने 3 generations ऑफ अपनी फैमिली जो है उसको लूज कर दिया था। सलमान अफसल जो कि आपको अगर हमारा टीवी देख रहे हैं तो आपको नजर आएंगे, 46 इयर्स के थे। इनके साथ इनकी वाइफ मदीहा सलमान 44 इयर्स थी, इनकी डॉटर यमुना 15 साल की थी, और इनकी जो सलमान की मदर और मदीहा की जो सास थी तलत अफजल वो 74 इयर्स की थी। इनको एक लड़के ने आके डिलिबरेटली एक ट्रक मारा था और रेशल स्लर्स इनको दिए थे जिसके के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। लंदन के अंदर इनका एक बच्चा सिर्फ जिसकी की उम्र 9 साल थी वो बच गया था। तो आज वो एक साल एनिवर्सरी के ऊपर ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, इनके भाई उमर ने कहा कि भाई हुआ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी और 3 generations चली गई, लेकिन हमको जो होप और स्ट्रेंथ दी इस कम्युनिटी ने दी, तो हम इसलिए जो है उस स्ट्रेंथ के साथ जो है आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर बहस एक बार फिर से खुल गई है कि भाई ये जो इस्लामोफोबिक जो और ये जो एक स्टीरियोटाइप जो इमेजेस लोग बना लेते हैं लोगों किसी के बारे में, तो वो हाउ यू नो गुड इट इज़ फॉर दिस कम्युनिटी जो कैनेडा के वैल्यूज़ हैं उनके साथ कितनी मैच करती है। ऑटावा के जो एक्स पुलिस चीफ हैं पीटर स्लॉली, आज वो भी एक स्पीच कर रहे थे और उसके अंदर भी उन्होंने बात की है इसकी, ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय हो रहा था ऑटावा के अंदर, जिसके के अंदर उन्होंने कहा है जी कि हमारी प्रेपरेशन पूरी नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं पीटर स्लॉली से कि भाई ये जो कुछ भी वहां पे हुआ था क्या वो ठीक था कि नहीं था। पीटर स्लॉली का कहना था कि जी ये जो कुछ हुआ है वहां पे ये अनप्रेसिडेंटेड था और ये सिक्योरिटी क्राइसिस था, क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पुलिस वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
अच्छा, इनको इनवाइट किया था स्टैंडिंग कमिटी ऑन प्रोसीजर एंड हाउस अफेयर्स ने, और उन्होंने कहा था कि जी क्या हमको ये ऑटावा पुलिस जो है उसको उसकी ज्यूरिसडिक्शन से ये इलाका निकालना चाहिए, जो स्ट्रीट है स्पेशली ये वेलिंगटन स्ट्रीट उससे इनको निकालना चाहिए और किसी और को आके इसको हिफाजत देनी चाहिए, और ये पैराडाइम शिफ्ट जो है इसके ऊपर आप क्या बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये डेफिनेटली एक पैराडाइम शिफ्ट है और हम जो हैं इसके लिए बहुत सारे फंड करते हैं इकट्ठे पुलिस रिस्पॉन्स और उसके लिए, लेकिन इस जगह पर यह सिक्योरिटी क्राइसिस आ गया था, उसके अंदर बहुत सारा जो इन्होंने ब्लेम है सोशल मीडिया और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाने वाले जो थे उनको दिया। उन्होंने कहा ये गलत किस्म की जो है बातें फैलाते थे, सोसाइटल पोलराइजेशन की तरफ जाते थे और आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म की जो फिलॉसफी जब बढ़ाई जाती है तो लोग पुलिस के ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चाहिए कि वो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो अपने ऊपर बनाए रखें और उनकी सेफ्टी के लिए काम करें। तो ये आज इन्होंने काफी सारी जो है मेजर बातें की। क्यूबेक में बहुत ज्यादा कंसर्न बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा फैल गया है, और जस्ट लास्ट वीक अभी हमने आपको बताया था कि वहां पे 25 केसेस थे, आज 52 केसेस हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक। वो कहते हैं जी कि वैसे तो क्यूबेक अब फर्स्ट प्रोविंस है कैनेडा के अंदर जिसने के इसकी भी जो है वैक्सीन शुरू कर दी है, जिसको कि वो कह रहे हैं रिंग वैक्स अप्रोच, लेकिन फिर भी इसका आउटब्रेक जो है ये बहुत ज्यादा उधर फैलता जा रहा है। और न सिर्फ ये कि 52 केसेस जो है सामने आए हैं बल्कि एक हैंडफुल ऑफ सस्पेक्टेड केसेस भी हैं, तो उसके ऊपर भी जो है काम किया जा रहा है। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। आज वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक ने बहुत लोगों की खासतौर पर मिडल ईस्ट में आंखें चौंका दी हैं। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट के अंदर ये जो तूफान आते हैं मिट्टी के तूफान डस्ट स्टॉर्म जो आते हैं रेत के तूफान ये जो आते हैं जिससे कि बिल्कुल चीजें हेजी हो जाती हैं, यहां तक कि जो टॉलेस्ट जो टावर है दुनिया का दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा वो तक हेजी हो जाता है। और इसके अलावा इन्होंने मिसालें दी हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जहां पे फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल कर दी गई और कुवैती पोर्ट जो थे दोहा शुएब शुकेब के वहां पे सस्पेंड कर दिए गए, जो मैरीटाइम ऑपरेशंस थे रियाद के अंदर और जो है तकरीबन 1200 लोग जो थे इतने ज्यादा हिट हुए थे इससे कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी तरह ईरान के अंदर जो खुजिस्तान का जो एरिया था वो बड़े बुरे तरीके से हिट था और 800 लोग जो थे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ी। इराक जो था उसके अंदर इतने ज्यादा बार बार आ रहे हैं, ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली इतने आ रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ इराकीज जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है कि ये सारे जो अब इन इलाकों के अंदर जिन्होंने डैम्स बनाए हैं और इन्होंने जो है वो कॉन्स्टेंटली इस इलाके के अंदर जो वॉरफेयर चल रही है गल्फ के एरिया के अंदर और फिर ये जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने कर दी है वाटर की और फिर इसके साथ साथ ये जो एक्सट्रीम वेदर अब बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ
ग्लोबल वार्मिंग का
जो ये जो क्लाइमेट चेंज आती जा रही है और उसके बीच में ये आर्टिफिशियल चीजें बहुत सारी कर रहे हैं अपने आप को अप मार्केट करने के लिए, तो उससे जो है बहुत सारा जो क्लाइमेट है उसको नुकसान आ रहा है। और वो उन्होंने आज बहुत बड़ी ये फिगर दे दी है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक कहता है इन गवर्नमेंट्स को, कुछ तो बहुत ही ज्यादा रिच हैं जैसे कि यूएई, कतर, बहरेन और सऊदी अरेबिया, लेकिन सारी गल्फ स्टेट्स इतनी रिच नहीं है, ओमान भी अब जो है दैट इज ऑल्सो कैचिंग अप बट दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री, वो कह रहे हैं जी कि इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनको एनुअल कॉस्ट जो इनकी आएगी $13 बिलियन अब इनको स्पेंड करना पड़ेगा आने वाले कई सालों में, यानी हर साल में भी एटलीस्ट वो यही इनको यूज करना पड़ेगा,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स
इनको खर्च पड़ने पड़ेंगे। तो ये आज बहुत ही ज्यादा जो है मतलब चौंका देने वाली खबर है। हम सोचते थे जैसे हमें अब लोग बताते हैं कनाडा में कि आज से जो 40 साल पहले सर्दी पड़ती थी वो अब नहीं पड़ती है, अब नहीं पड़ती है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अप्रैल मई के महीने में भी हल्का सा स्वेटर या हुडी या कुछ पहननी पड़ती थी, तो अब ऐसा नहीं। तो इसी तरह ये जो इलाके हैं इनके अंदर भी, और फिर इन्होंने बहुत जो मैसिव कंस्ट्रक्शन कर दी है ना माजिद भाई, उसको भी जिस वक्त आप नेचुरल जो होता है मेकअप एक जमीन का वो चेंज करते हैं, जैसे कि दुबई के अंदर उन्होंने पाम बनाया है, समुन्दर के अंदर लाखों टन मट्टी डाल के और उसको वो एक खूबसूरत सा आइलैंड बनाने के लिए,
ब्यूटीफुल है
लेकिन मतलब ये चीजें जैसे आप मरीन लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं और इसी तरह एनवायरमेंट को भी खराब कर रही है ना, बिकॉज दैट वॉज समुन्दर राइट, समंदर के अंदर अब आप वो तो जब आप नेचुरल हैबिटेट जो होता है या नेचुरल मेकअप जो अर्थ का है उसको जब आप चेंज करते हैं तो फिर वो डैम्स बन रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे अरब कंट्रीज के अंदर, जैसे कि सऊदी अरेबिया में मैसिव डैम्स वो लोग बना रहे हैं और जगहों पे, तो अब उसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। तो बहरहाल जी अब इनको ये देखना पड़ेगा क्या। आज जनाब यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्मली कह दिया है कि उनको एक लेटर आया था टर्की की तरफ से, आपको पता ही है कि बहुत अरसे से, कुछ 4 महीने पहले हमने आपको बताया था कि टर्की ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये क्या हमको टर्की कहते हो, आपको पता ही है वो टर्की वो बर्ड है जिसको कि आप उसके ऊपर जो है हर अच्छे मौके पे आप बेचारे को उसको काट के आप खाते हैं, तो टर्की जो था बड़ा नाराज था इस चीज से कि हमारे मुल्क का नाम टर्की नहीं है। तो इन्होंने एक लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस को, इन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क का नाम तुर्की है होना चाहिए। तो आज जो है यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है, इनके जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर थे मेवलत कसुगलू, उन्होंने कहा जी कि हमने इनको एक लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस को और आज से ये इफेक्टिव है और हमारे जो कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की नहीं है, अब इट विल बी कॉल्ड नाउ तुर्की है। तो ये जी नेम चेंज है। और जनाब आज से प्लेटिनम जो जुबली सेलिब्रेशंस हैं क्वीन एलिजबेथ की वो शुरू हो चुकी हैं और थोड़ी सी हम आपको इनकी हिस्ट्री देते हैं। एलिजबेथ अलेक्जेंडर मैरी विंडसर ये पैदा हुई थी April 21st, 2026 को मेफेयर लंदन में और उस वक्त की ये प्रिंसेस थी एलिजबेथ जिनकी के शादी हुई थी फिलिप माउंटबेटन के साथ, जो कि बेटे थे प्रिंस एलिस ऑफ बैटनबर्ग एंड प्रिंस एंड्रयू ऑफ ग्रीस के इन वेस्टमिंस्टर एबी ऑन November 20th, 1947। इनकी शादी को 74 इयर्स हो गए हैं, जब तक के इनके हस्बैंड की जो है वो डेथ नहीं हो गई थी लास्ट ईयर April 9, 2021 में एट द एज ऑफ 99 और ये जो है थ्रोन पे बैठी थी February 6, 1952 को आफ्टर इनके जो फादर हैं किंग जॉर्ज सिक्स उनकी डेथ हुई थी और ये जो थी रॉयल टूर पे थी केनिया में। इनकी कॉरोनेशन हुई थी June 2nd, 1953 को। ये यूके की लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क इन हिस्ट्री हैं। इनके 4 बच्चे हैं चार्ल्स एन एंड्रयू एडवर्ड 8 इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और 12 इनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. तो आज इन्होंने जो है वो बहुत सारी परेड और जो है वो एरियल
डिस्प्ले.
वेरी 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 नाइस टू सी हर. सो हॉटनिंग इस एज में भी बड़ी, वो अपनी कैप शैप पहन के उधर गैलरी में खड़ी थी. हाँ, शी इज अ क्वीन. तो वो जो है वो बड़ा जबरदस्त इनके जो है वो सो द सेलिब्रेशन हैव किक स्टार्टेड इनकी जो है प्लेटिनम जुबली के. अच्छा जी, हंगरी जो है अब वो उसने भी अब सियापे पाने शुरू कर दिए हैं यूरोपियन यूनियन में. यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम फर्दर सैंक्शन लगाना चाहते हैं. परसों से इनकी डिस्कशन चल रही है यूरोपियन यूनियन की कि हमको और भी लोगों के ऊपर और भी जो रशियन एंटिटीज हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाने पड़ेंगे. लेकिन हंगरी कह रहा है कि नहीं, आपको कुछ लोगों को इसमें से हटाना पड़ेगा. हंगरी जो है उसने कहा है कि रशिया के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के पेट्रियार्क हैं किरिल, उनको इस लिस्ट में से आप हटाएं. और जो है कुछ चीजों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो आप सैंक्शंस पैकेज ला रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ सैंक्शंस पैकेज अगेंस्ट रशिया, उसकी कुछ जो क्लॉजेज हैं उसके साथ हंगरी जो है एग्री नहीं करता. तो उसने यूरोपियन यूनियन को कहा कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हंगरी का कंसर्न भी ये है कि ये जो कंप्लीटली ऑयल एंड गैस रोक रहे हैं ना रशिया का, वो ये नहीं चाहता है. वो चाहता है कि उसका ऑयल एंड गैस जो है कंप्लीटली 100% उसको ना किया जाए. बल्कि कुछ लोगों का तो कहना है कि ये शायद आने वाले दिनों में एग्री कर जाएंगे रूबल में पेमेंट करने के लिए उनको. तो अब यूरोपियन यूनियन में बड़ी फूट पड़ी हुई है जिसका के जिक्र बड़ी दफा जो है, फूट तो नहीं है मगर डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिसका के जिक्र ज़ेलेंस्की साहब ने भी कहा कि भाई तुम लोग पहले अपने बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करो तो फिर तुम करना. बहरहाल जी, अब ये देखेंगे क्या होता है आने वाले दिनों में. बहरहाल इन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल ये बातें नहीं मानूंगा. लेकिन अब ये जो खासतौर पर इन्होंने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के पेट्रियार्क किरिल के बारे में कहा, किरिल साहब जो है वो तो पुतिन साहब के बड़े दोस्त हैं. तो अब ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाने हैं आपने, तो भाई ये से चलेगा ना जी. तो बहरहाल हम देखेंगे. अच्छा जनाब, ये अमेरिका के अंदर जो है ये तो गन कंट्रोल किसी तरह जो है हो ही नहीं रही है. ये आपको पता ही है कि टल्सा के एरिया में, अब ओक्लाहोमा में जो था, ये एक आदमी था, ये फिर से गन लेके निकला. और इसके बारे में आप पुलिस कह रही है कि मारने से पहले, और आप ये देखें कि ये AR-15 स्टाइल राइफल जो थी ये लेके निकला जस्ट एन आवर बिफोर इसने खरीदी. और उसके बाद ये एक हॉस्पिटल में गया, वहां पे इसने उस डॉक्टर एक को मारा और भी चार लोगों को, इंक्लूडिंग हिम, चार लोगों को मारा. जबकि इसको फिर तो इसको आज जो है अब आइडेंटिफाई किया गया है. पुलिस ने इसको कहा है कि ये माइकल लुइस है. और वो कहते हैं जी कि इसका मोटिव ये था कि इसके जो बॉडी के ऊपर वो लेटर लिखा हुआ था, इसने सोचा होगा कि जहर है मुझे भी गोली मार देंगे, तो इनकेस ये मुझे गोली मारते हैं तो उनको मेरा मोटिव पता होना चाहिए. वो कहते हैं जी इसका मोटिव ये था कि ये अपने डॉक्टर को मारना चाहता था क्योंकि इसने बैक सर्जरी करवाई थी उस डॉक्टर से और उस डॉक्टर ने ठीक से की नहीं थी, तो इसका बैक का पेन जा नहीं रहा था. तो ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये बंदूक लेके निकला और इसने मार दिया उसको.
तीन फिजिशियंस को मारा है,
तीन. हाँ जी, तो उसमें जो है चार लोगों की जो है वो डेथ हो गई है. तो अब फिर से ये बहस जो है अमेरिका में शुरू हो गई है कि भई आपको अभी भी गन कंट्रोल नहीं करना है. जैसे देखें कनाडा में उन्होंने फॉरन ट्रूडो साहब ने अनाउंस कर दिया. अब तो अब
तीन लोग, तीन हादसे हुए हैं पिछले तीन हफ्तों.
हाँ, तीन हफ्तों में बैक टू बैक होते जा रहे हैं
और सब ने उसी वक्त गन्स खरीदी है, उसी वक्त मारा है.
बिल्कुल बिल्कुल, तो इट्स दैट इजी. तो ये करते हैं. अच्छा जी, आज हमारे तो पाकिस्तान में लोग, आपको पता ही है कि कुर्सी के चक्कर में जो है, या तो कुर्सी के चक्कर में है या सो रहे हैं. इसका आप देखें आप फायदा फिर जो है दुनिया कैसे उठाती है. एंड राइटली सो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. इंडिया का एक जो है बहुत ही हाई लेवल एक डेलीगेशन जो है, जिसको के हेड कर रहे थे उनके सीनियर ऑफिशियल जेपी सिंह, वो आज अफगानिस्तान में पहुंचा है और उन्होंने अफगानिस्तान के कुछ लीडर्स के साथ मुलाकातें की हैं. इस चीज की जो इंफॉर्मेशन है इनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो है उन्होंने की है. यहां पे इन्होंने, ये इनका इंडिया का फर्स्ट हाई लेवल विजिट है टू अफगानिस्तान आफ्टर यूएस विड्रू लास्ट ईयर. और यहां पे इन्होंने फिर से बायोलेट्रल टाइज की बात की है और ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की है. और इन्होंने कहा जी जब आपको जरूरत थी तब भी हमने भेजा था. और आपको पता ही है कि इंडिया की बहुत सारी यहां पर इन्वेस्टमेंट भी है. तो ये पिछले दिनों में जो ये वार्म अप रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया का बड़ा कंसर्न आ गया था. अब तो उनको पता है जी ना इमरान खान रहा है और अपने सियापों में ये लोग पड़े हुए हैं, तो चलो ठीक है हम फिर से जो है दोस्तियां बनाते हैं. तो वो आज पहुंचे हुए थे, तो अब बड़ी वहां पे उनकी जो है आपस में तो इन्होंने जी वो वहां पे पहुंचे हुए थे और वो किया हुआ था. तो पाकिस्तान वालों जागो, देखो क्या हो रहा है आपके रीजन में. खैर, हाँ जनाब, जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के लीडर, उन्होंने आज एक दफा से फिर जो है मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और हिट किया। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो वैली है जम्मू और कश्मीर की, उसके अंदर जो है कश्मीरी हिंदूज को अलेजली जो है वो मारा जा रहा है, और इसके ऊपर इन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा कि बैंक मैनेजर्स, टीचर्स, इनोसेंट पीपल आर गेटिंग किल्ड, और ये जो कश्मीरी पंडित्स हैं ये भाग रहे हैं यहां से, और बीजेपी जो है वो सिर्फ जो है कश्मीर को अपना पावर का की सीढ़ी बना के पावर में रहना चाहता है। और वो कहते हैं जी कि ये सारी बातें राहुल गांधी जी ने उस वक्त कही जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं वो अक्षय कुमार की जो फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज वो मूवी देख रहे थे, और बहुत ही वो तारीफ कर रहे थे कि इस तरह के जो हिंदू महाराजे हैं इनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए और इस तरह का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए जिसमें हिंदू किंग्स की अजमत जो है वो सामने आए। तो आपको पता ही है कि मुगल्स के अगेंस्ट एक बड़ी वहां पे वेव चली हुई है कि ये मुगल्स को क्यों पढ़ाया जाता है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में मुगल्स क्यों हैं? वो पायन मुसलमानों ने गोरे ने कितने साल हुकूमत की हिंदुस्तान पे, 250 साल। मुसलमानों ने डिफरेंट डायनेस्टीज ऑल टुगेदर मुसलमानों ने 1000 साल रूल किया है हिंदुस्तान पे, तो आप 1000 साल का फुटप्रिंट कैसे खत्म करोगे भाई? है जी, ये जो आपकी जो फजूल किस्म की रस्में थी, ये सती टाइप की, ये किसने खत्म किया? ये सारे मुसलमान राजों ने आके फिर खत्म किया, राइट? आपके पास क्या था, एक भारत नाट्यम? ये भारत नाट्यम के साथ जब आप क्लेम करते हैं हमारे बहुत से ये डांसेज हैं और ये हैं, ये कौन लेकर आया? ये कोई जो लोग आए पर्शिया से, कोई टर्की से, वो तो मतलब फूड्स कितने सारे आपके पास आए? आज आप कहते हैं जी हम बिरयानी खा रहे हैं, कहां से आई ये बिरयानियां? ये किन, ये तो जो मुसलमान नवाब थे ये तो उनके दरबारों में बनती थी चीजें, इंतहाई थर्ड क्लास ठरा जो थे वो यहां पे बनता था। फिर कौन लेकर आया शराब, बड़ी फाइनेस्ट क्वालिटी की जो है, ये सेल्जुक टर्क्स लेकर आए ना जी, साउथ उधर से, सेंट्रल एशिया से जब आए तो आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब एनीवेज जी, तो राहुल गांधी जी ने बड़ा इनको आज क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा आप फिल्में देखते रहो और ये यहां पे लोग मरते रहेंगे, तो आपको उसकी तरफ कुछ देखना वेखना नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लाल चौक जो है उसके ऊपर आज बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और उसमें कहा जी कि ये जो लोग मर रहे हैं इसके लिए आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट क्या जो है वो कर रही है। अच्छा जी, आज तो और बेतहाशा जो है इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है हिंदुस्तान के अंदर हो गई, और एंड राइटली सो, जाहिर है कि उनका मुल्क है तो उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, जैसे शायद हमारे मुल्क में हो तो हमें भी ना अच्छी लगे। खैर, हम तो बड़े पाकिस्तानी तो एनलाइटेंड लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, मुल्क हमारा हिंदुस्तान से छोटा है पर दिल हमारा बड़ा है ना। अच्छा। पाकिस्तानियों का दिल बड़ा तो हम तो नहीं करते। अच्छा जी, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं सज्जन सिंह वर्मा साहब, कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने जनाब आज जिना साहब की बड़ी तारीफ कर दी, तो जाहिर है फिर तो कंट्रोवर्सी होनी थी। उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग जिना साहब के इतने ज्यादा अगेंस्ट क्यों हो और नेहरू साहब के इतने अगेंस्ट क्यों हो, क्योंकि ये दोनों जो थे ये फ्रीडम फाइटर्स थे और ये तो आजादी की जंग लड़ रहे थे, और इन्होंने इस चीज को भी कहा कि पार्टीशन बिल्कुल राइट डिसीजन था, जो कंट्री का जो डिवीजन था वो एक बड़ा वाइज डिसीजन था, जिना जो थे वो आजादी के लिए लड़ रहे थे और जो है उन्होंने इस कंट्री को तोड़ा नहीं है, उन्होंने नहीं तोड़ा इसको, उन्होंने बल्कि बीजेपी के ऊपर बड़ा हिट किया कि अब तुम जो है डिवाइड पैदा कर रहे हो रिलीजियस बेसिस के ऊपर, इन लोगों ने डिवाइड नहीं किया था, ये तो आजादी की जंग लड़ रहे थे और इसके अंदर चेंज वो लाए थे, और जिना साहब जो थे उसको इसलिए तुम लोग करते हो, क्रिटिसाइज करते हो कि वो मुसलमान है, तो आजादी को तुम लोग मुसलमानों के साथ जोड़ते हो कि इनकी वजह से सारी खराबियां हुई हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी कि पार्टीशन 1947 के अंदर जो हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनवरी 26 को भी इसी साल में मोदी जी जो थे उन्होंने नेहरू साहब और जिना साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से जो है पार्टीशन हुआ है, तो इन्होंने आज कहा वर्मा साहब ने कि आप जो हैं ये आरएसएस के जो चीफ मोहन भगवत साहब जो हैं और ये पीएम मोदी जी जो हैं इनको तो बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए जिना साहब का कि इन्होंने पार्टीशन कराया, क्योंकि अगर इन्होंने पार्टीशन ना कराया होता तो ये जो आप पावर इतनी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो ना हिंदुस्तान के अंदर तो आप नहीं कर सकते थे मोदी जी, आप ये पावर एंजॉय नहीं कर सकते थे। तो जाहिर है कि अब इसके ऊपर बेतहाशा कंट्रोवर्सी इंडिया में शुरू हो गई है कि तुमने जिना साहब की तारीफ कैसे की है। हालांकि हम तो नेहरू साहब की करते हैं, हमें तो बड़े भी स्टाइलिश लगते थे, हैंडसम, वो जो उनके अफेयर्स थे वो उनके अपने थे लेकिन थे तो बड़े स्टाइलिश पॉलिटिशियन, तो बहरहाल जी ऐसी किया ना, साड़ा दिल ही बड़ा वड्डा है। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आज पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं شہباز شریف صاحب وہ ترکی کے پریزیڈنٹ جو ہیں اردوغان صاحب کے ساتھ مل رہے تھے اور آج پھر پتہ نہیں بڑی پیار کی انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب ہم جو ہے اس ملک کی دو ملکوں کی دوستی نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. اور اسلام آباد کے اندر جو 75th اینیورسری آف اسٹیبلشمنٹ آف ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں اس کو جو ہے کیا جائے گا سیلیبریٹ, تو اس کے اندر ہائی لیول ٹرکش ڈیلیگیشن آئے گا اور ہماری جو پیار ہے ہمارا وہ جو اٹ از ایمبیڈیڈ ان ہسٹری نیو تھنگس ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم اور زیادہ ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ٹائز بڑھائیں گے.
گڈ,
ویری گڈ بھائی جان,
گڈ فار پاکستان,
گڈ فار پاکستان. اس سے پہلے تو شاید نہیں تھے ہمارے ریلیشن اچھے, اچھا آپ دیں گے, ویری گڈ. اچھا جناب, آج شری مزاری صاحب جو ہیں, یہ کل کی ویسے لیٹ نائٹ نیوز تھی, شری مزاری صاحبہ جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیومن رائٹس منسٹر تھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پیچھے, تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے یونائٹڈ نیشنز کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشنز امپارشل انویسٹیگیشن کرائے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ نے آزادی مارچ کے بیچ میں وائلنس دکھائی ہے اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل پروب کی جائے, جو کہ May 24-25 میں ہوا. یہاں پہ لوگ جو ہے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ پولیٹیکل کرائسس انہوں نے شروع کر دیا, اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے زیادہ پاپولر ہیں, اگر نہ ہوتے تو دنیا ساری جو پاکستان کی ہے وہ سڑکوں کے اوپر نہ نکلی ہوتی. تو ایک اچھی بھلی گورنمنٹ کو ہٹایا اور ان لوگوں کو بٹھایا جو کہ منی لانڈرنگ کے کیسز کے اوپر بیل پے آؤٹ ہیں. تو یہ اس کے اوپر یہ جو انہوں نے وائلنس کی, ایسے لوگوں نے جو کرمینلز نے ان کے خلاف آپ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن بٹھائیں. تو یہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں امیر بھٹی صاحب, پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ کیا کھا کے آئے ہیں. ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں کچھ دن پہلے جو کچھ ہوا تھا, یہ لوٹے جو آپ لے کر آئے ہو پنجاب اسمبلی میں, یہ ایک شیم فل ایکٹ ہے. آپ کو بتائیے کہ کیا ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں بھی, کہ یہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ ووٹنگ کرو حمزہ شریف کو چیف منسٹر چوز کرنے کے لیے, تو ان کی طرف ریفر یہ کر رہے تھے, تو ان کو کہا گیا. تو پھر کورٹس کیا کر رہی تھی, آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کورٹس کا کام نہیں ہے پارلیمنٹری افیئرز کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کرنا, انلیس اینڈ انٹل ہمیں پتا چلے کہ سپیکر کا جو ایکشن ہے ان پنجاب اسمبلی وہ ڈس آنیسٹ ہے, اس کے علاوہ ہم پارلیمنٹری افیئرز کے اندر جو ہیں انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال جی, ہیئرنگ جو ہے فردر جون 6 کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کی گئی ہے. ایک بہت بڑی خبر جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے, اور وہ ہوا یہ ہے کہ اے آر وائی کے سینئر جرنلسٹ چودھری غلام حسین اور ماریا میمن جو ہیں ان کے بیچ میں ایک پروگرام اے آر وائی کا چل رہا تھا, جس کے اندر انہوں نے سینئر جرنلسٹ چودھری غلام حسین نے یہ کلیم کیا کہ مجھے خود جنرل پرویز جنرل باجوہ نے قمر باجوہ نے یہ کہا ہے کہ سکس جو سی پیک کا جو چائنیز جو پروجیکٹس چلا رہے تھے جس کے اندر انہوں نے 19 بلین یو ایس ڈالر انویسٹ کیے تھے, اس میں سے پی ایم ایل والوں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 9 بلین وہ کھا گئے اس میں سے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور کوئی میرے سامنے آ کے کہہ نہیں سکتا مجھے کہ میرا یہ کلیم جھوٹا ہے, اس لیے کہ قمر باجوہ صاحب نے مجھے یہ خود بتایا. اچھا جی, اب جب یہ بات آئی تو لوگوں نے کچھ نے انصار عباسی جو سینئر جرنلسٹ ہیں جو کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ کی ہوئے گی؟ انہوں نے اپنے سورسز یوز کرتے ہوئے انصار عباسی صاحب نے جب ملٹری سے پوچھا تو ان کے سورسز نے کہا, انہوں نے اپنی اس میں جو ٹاک ہے اس میں یہ انصار عباسی کہتے ہیں, انہوں نے مجھے 3 لفظ لکھ کے بھیجے, ربش, ٹوٹلی ربش. تو کہتے ہیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ جناب اس کا کیا مطلب ہے, آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں اس کا کیا مطلب, وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو جنرل باجوہ نے ایسے بات کہی ہے, نہ تو انہوں نے ان سے بات کی ہے, نہ ہی اتنے بڑے کانٹریکٹ میں سے 9 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ, آپ سائفن آف کر ہی نہیں سکتے. اور بلکہ وہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری نے مجھے کہا کہ یہ اتنا اسٹوپڈ ایلیگیشن ہے کہ اس کے اوپر بلیو نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈو یو ریئلی انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ از 9 بلین ڈالرز, ڈو یو ایون نو؟ تو کیسے غائب کر سکتے ہیں اس کے اندر سے؟ تو یہ بالکل اب مطلب ہے بالکل ہی آرمی چیف کو جو ہے نا آپ خراب کرنے کے اس میں نہ آپ کریں, تو یہ جھوٹ ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک اور بھی بات کلیئر کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک اور بھی جو ویڈیو جو سامنے آ رہی ہے جس میں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے زرداری صاحب کو فون کیا اور وہ ترلے کر رہا ہے عمران خان کے دوستیاں بنانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے, میں نے اپنے سارے سورسز رن کیے اور میں نے پوچھا دونوں طرف, وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. तो मतलब भाई झूठी बातें क्यों फैलाते हो, क्यों फैलाते हो? तो ठीक है, आप लोगों का जो है वो गुस्सा है कमर बाजवा की तरफ, लेकिन झूठी खबरें तो ना फैलाओ भाई, ना फैलाओ ना। 9 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, 19 बिलियन टोटल अमाउंट है, उसमें से 9 बिलियन निकल जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा भाई, खुद भी सोचा करो यार। अच्छा जी, ये इमरान खान साहब की एक इंटरव्यू चल रही थी और वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि ये जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है इससे जो एस्टैब्लिशमेंट का रवैया है मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होएगा, मुल्क के 3 हिस्से भी हो सकते हैं। अच्छा, उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की कि जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है उसमें अब इसका जी अब वो कटा खोल दिए इन्होंने जी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने ये जो बात कही है तो ये इंतहाई ठीक नहीं है, एंड ही हैज एक्चुअली क्रॉस द लिमिट एंड लाइन। वो कहते हैं जब मैं अपने जो है पाकिस्तान की तरक्की की खातिर तुर्की में बैठ के मैं वो साइन कर रहा था अग्रीमेंट्स और ये पाकिस्तान को टूटने की बातें कर रहे थे। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी और ये आपको कोई हक नहीं पहुंचता इमरान खान साहब कि आप पाकिस्तान को जो है ये करने, ये थ्रेटन करने की कोशिश करें, और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि ये अनफिट है पब्लिक पब्लिक पोस्ट के, इनको कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिला, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं मिलना चाहिए इमरान खान साहब को, क्योंकि इनका दिमाग ठीक नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह की सिमिलर बातें मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, वो भी इस्लामाबाद में बातें कर रही थी जर्नलिस्ट से, उन्होंने भी इमरान खान के इस बयान के बाद आने के बाद कहा है, उन्होंने कहा यह किसकी बोली बोल रहा है ये आदमी, ये किसकी आइडियोलॉजी बता रहा है, ये जैक गोल्ड स्मिथ की बता रहा है या इसराइल की पॉलिसी जो है वो बयान कर रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इमरान खान अपना जो है वो
दिमागी
चेकअप कराए क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है और उसको सिर्फ पावर चाहिए, तो जो है लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि द पावर नेवर बिलोंग टू इमरान खान। बाजी, ये तो आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट कह दी, यानी कि पावर ओनली बिलोंग्स टू यू, क्योंकि आपके जो कजन हैं वो बैठे हुए थे टर्की में, ना तो उनके ना तो वो मिनिस्टर हैं ना कोई उनके पास पोस्ट है, तो किसते पैसे थे टर्की पहुंचे सन वालिद साहब के नाल, है जी, दसो जरा बाजी, ये तो दसो जरा किस कैपेसिटी में वो बैठा हुआ था भाई वहां पे, जहां पे वो सारे डिग्निटरीज बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब मैं मुल्क की तरक्की के लिए बात करने गया था, तो भाई आपका बेटा जो है वो किस कैपेसिटी में वहां पे बैठा था?
सही,
ना तो वो मिनिस्टर है ना वो कोई और पब्लिक सर्व उसके पास है,
उनको ग्रूम कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, उनको ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो टैक्स पेयर्स के पैसे पे हैं।
Exactly.
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, और लुटो जी दोनों आता नाल सनू की है। अच्छा जी, जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, आपको पता ही है कुछ दिन पहले जो है पीटीआई ने एक पिटीशन डाली थी कि ये जो है जनाब हनीफ अब्बासी साहब, इनको स्पेशल जो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनाया गया था, तो पीटीआई ने कहा था कि ये आदमी जिसके के ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर को कैसे जो है वो एडवाइस दे सकता है, तो पहन ये तो फिर मतलब है आपने गलत पिटीशन डाली है ना, तो सारों के ऊपर ही केसेस हैं। अच्छा जी, जब ये पिटीशन आई तो आज लाहौर सॉरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज जो है फैसला देते हुए कहा, उन्होंने उस वक्त भी वैसे कहा था और अब भी उन्होंने कहा जी कि अगर कोई जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देना चाहता है एडवाइस देना चाहता है तो उसके लिए उसको कुर्सी देने की जरूरत नहीं है, उसको वो बाहर बैठ के भी वो दे सकता है। हालांकि इनके जो लॉयर थे हनीफ अब्बासी साहब के, उन्होंने कहा था जी ये पोस्ट नहीं है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा अगर ये पोस्ट नहीं है तो बाहर बैठ के फिर ये एडवाइस करें, तो आज फिर जो है हनीफ अब्बासी साहब ने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने जर्नलिस्टों को बताया जी कि ठीक है मैं बड़ा थैंकफुल हूं जनाब शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कंसिडर किया था लेकिन मैं जो है वो कर रहा हूं। पिशावर हाईकोर्ट ने जी अब प्राइम मिनिस्टर जो थे ओल्ड इमरान खान साहब, उनको 3 वीक का ट्रांजिट बेल दिया है ऑन अ श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 50,000 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे जो है इस्लामाबाद में दूसरा लॉन्ग मार्च करना है और मुझे करने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अगर उधर फिर से लॉन्ग मार्च करूंगा तो मुझे जो है ये अरेस्ट कर सकते हैं जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, तो पिशावर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कैसर रशीद, उन्होंने इनकी प्ली जो एक्सेप्ट की और इन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए और ना ही इनको इस्लामाबाद में रोका जाए जाने से, और उन्होंने कहा जी कि हम आपको पता ही है कि इमरान खान साहब ने 6 डेज का अल्टीमेटम दिया था लास्ट जब इन्होंने मार्च की थी मार्च 26 को, और इन्होंने कहा था 6 दिन के अंदर इलेक्शंस अनाउंस करो वरना मैं फिर से आऊंगा। तो अब उन्होंने पिशावर हाईकोर्ट कहा कि ये जो है मुझे पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इनको पीसफुल, लेकिन उन्होंने कहा जी पीसफुल आपको करना पड़ेगा, मार्च आपका पीसफुल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी, उसने अब नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आपको पता ही है कि 5 सीटें जो कि पंजाब असेंबली में जिन एमएनए को डीसीट कर दिया गया था, उसके ऊपर यह कहा गया था कि यहां पे जो है वो इसमें से जो 5 सीटें हैं वो जो औरतों और माइनॉरिटीज के लिए हैं उनको भी खाली किया जाए। तो यहां पे इन्होंने इसलिए कहा है, ये इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इन्होंने इनकी ये जो थी नोटिफिकेशन थी वो भेजी है और कहा है कि नहीं, हम इस बात को नहीं मान सकते हैं। ये जो सारे लोग थे, हम एक दफा फिर से आपको बता दें कि ये 25 जो डिसिडेंट पीटीआई के जो लॉ मेकर्स थे वो उनमें से ये थे, लोग शामिल थे, जिसके के बारे में कहा गया है कि इनको जो है वोट का हक वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सर्टन पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो है दरख्वास्त दी थी कुछ लोगों ने कि नहीं, इनका वोट क्यों ना माना जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ये इलेक्शन था। तो उसके अंदर जो 5 ये जो सीटें थी पंजाब असेंबली की, इनको रिजर्व किया गया था विमेन एंड माइनॉरिटीज के लिए। तो आज इन्होंने जो है उसके लिए नोटिफिकेशन देते हुए कहा है कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मान सकते, पीटीआई की ये जो रिजर्व सीट्स है ये ऐसे रहने दें। अब जाहिर है कि इसके ऊपर पीटीआई का बड़ा कंसर्न फिर से आ गया है, वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हम रख सकते हैं, और ये जो लाहौर हाईकोर्ट का आज का वर्डिक्ट आया उसके अगेंस्ट अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो जिनको डिसीट किया है तो फिर डिसीट तो सबको डिसीट होना चाहिए ना, उसमें फिर ये आप ये इसको ये क्यों कर रहे हैं। आज अल जजीरा की बहुत ही एक बड़ी रिपोर्ट आई है और काफी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है इनकी। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उस तक के अंदर अब जो है एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट जो है आने लगा है। इनके जो भजन होते थे वो रिलीजियस सॉन्ग्स होते थे और उनको रिलीजियस सॉन्ग्स में इनके जो लॉर्ड्स और जो डीटीज होती थी उनको प्रेज किया जाता था। इस वक्त इवन भजन जो हैं वो एंटी मुस्लिम गाए जा रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि ये सिंगर्स जो हैं इसमें बड़े आगे आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि यूपी के अंदर, वो इन सिंगर्स को अवार्ड्स दे रही हैं इस तरह के गाने बनाने के लिए। जैसे कि उन्होंने एक भजन सिंगर प्रेम कृष्णा नवांशी के बारे में बात की है। वो कहते हैं जी इनके ये जो गाने हैं जैसे इस तरह के, इंसान नहीं हो सालो हो तुम कसाई, बहुत हो चुका हिंदू मुसलमान भाई भाई। अच्छा। तो वो कहते हैं जी इस तरह के गाने जो हैं ये जो इनकी हिंदू बेल्ट जो नॉर्दर्न स्टेट्स में हैं उनको बड़ा सुना जाता है, और जब से मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 में आई है उस दिन से ये ज्यादा ही पोलराइजेशन इंडियन सोसाइटी की होती जा रही है। हिंदू फेस्टिवल्स जो हैं इनके अंदर मुस्लिम नेबरहुड्स में जा जाके जो है ढोल बजाए जाते हैं, अजान के वक्त में एन इस्लामोफोबिक लिरिक्स इनके होते हैं, और ये जो पीपल लाइक योगी आदित्यनाथ जो हैं अलेजली यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इन चीजों को, ये रेट्रिक जो है ये इसको बिल्कुल इसमें रोकते नहीं है। ये इंतहाई एंटी नेशनल मुसलमानों को कहा जाता है और अक्सर इनको कहा जाता है कि भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ। वो कहते हैं जी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक ये तो हुई है, इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर एक और सिंगर है लक्ष्मी डूबे, और यंग सी ये लड़की है, और ये जो है सिर के ऊपर वो जो नहीं वो लाल सा वो वर्मिलियन जो है वो लगाती है और मैरीगोल्ड गार्लेंड्स पहनती है, और ये हिंदुत्व पॉप सॉन्ग्स गाती है और इसके बेतहाशा जो है फॉलोअर्स हैं। अगर और ये इसके गाने इस तरह के होते हैं, अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो वो कहते हैं जी कि ये जो हिंदुस्तान एक किसी जमाने में सेक्युलर कंट्री होता था उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एटलीस्ट ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, और अगर आ गई हैं तो ये बिल्कुल हमें लग रहा है ये वही टैक्टिक्स हैं जो कि नाट्सी जर्मनी में जो हिटलर ने जो था वो यूज किया था। तो बड़ा उन्होंने हैरत का इजहार किया है कि हम तो दूसरी खबरें इंडिया की देते थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये चल रहा है तो कैसे चलेगा। रजा मुराद जी आपको पता ही है कि इंडियन फिल्मों में बड़े शक्तिशाली किस्म के वो विलन्स का कैरेक्टर करते थे। आज उन्होंने अपनी एक बड़ी पुरानी बहुत ही पुरानी व्हेन ही वाज आल्सो वेरी यंग ज़ेबा बख्तियार के साथ एक जो है तस्वीरें कुछ जो हैं वो इन्होंने आज रिलीज की हैं, और इन्होंने कहा जी कि बड़ा ही ये ट्रेंड सेट किया था स्टारडस्ट ने उस वक्त, क्योंकि जाहिर है कि फोटो शूट्स हमेशा हीरोज के साथ होते थे, विलन्स के साथ कभी भी नहीं होते थे। लेकिन ज़ेबा बख्तियार वॉज वेरी क्लोज टू मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इससे जब पूछा गया स्टारडस्ट ने जब पूछा, क्योंकि ये हिना की बहुत बड़ी हिना के बाद बहुत बड़ी ये स्टार बन गई थी, तो राज कपूर साहब की आपको पता ही है फिल्म वो इन्होंने बनाई थी, स्पेशली पाकिस्तान से इनको बुलाया था। तो वो कहते हैं इनसे जब पूछा गया कि हम एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं और विलन के साथ तुम्हारा फोटोशूट रोमांटिक फोटोशूट करना चाहते हैं तो तुम किसके साथ करना चाहोगी, तो वो कहते हैं जी ज़ेबा बख्तियार ने रजा मुराद का यानी मेरा नाम लिया था। तो उस हमने किया, तो ये दिस वॉज एन एक्सट्रीमली जो है वो टॉक्ड अबाउट और बड़ा हॉट ये रहा, मतलब टॉपिक रहा ऑफ डिस्कशन के, विलन के साथ फोटोशूट, क्योंकि फोटोशूट तो सिर्फ जो है हीरोज के साथ होते हैं.
सही.
तो ये दिस वॉज, तो वो उसने आज अपनी थ्रो बैक पिक्चर जो है वो की थी. अच्छा जी, यूक्रेन जो है उसने अपने वर्ल्ड कप के जो है वो ड्रीम्स जिंदा रखे हुए हैं. उसकी वजह ये है दे आर स्टिल अलाइव, क्योंकि इन्होंने आज जो हैम्पटन पार्क के अंदर जो फर्स्ट गेम हुई है इसकी, उसके अंदर स्कॉटलैंड को 3-1 से हरा दिया है. और अब ये संडे को वेल्स का सामना करेंगे कार्डिफ में, और अगर इन्होंने उसको भी हरा दिया तो फिर नवंबर के अंदर जो फाइनल्स हो रहे हैं फीफा के कतर में, उसके अंदर ये जा सकते हैं. श्रीलंका ने अपने फास्ट बॉलर लेजेंड लसित मलिंगा, वैसे तो उनकी एज 38 इयर्स ही है लेकिन वो हट गए थे यहां से इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन उनको फिर से ये लोग बॉलिंग स्ट्रेटजी कोच लेकर आए हैं फॉर प्लेइंग 8 ओडीआईज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो वो कहते हैं जी कि इसका एक्सपीरियंस जो है वो खासतौर पे जो T20 का इसका डेथ बॉलिंग जो ये करता था वो बड़ी जबरदस्त है, तो उसके लिए हम इसको लेकर आए हैं. और ये मैचेस जो हैं ये अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, तो जाहिर है कि वो बड़ी जबरदस्त टीम है. इन्होंने जो था ये मलिंगा साहब जो थे इन्होंने बड़ी जबरदस्त आपको पता है ये बॉलिंग की हुई है, लेकिन इन्होंने अपना ओडीआई जो करियर था वो जुलाई 2019 में खत्म कर दिया था, और T20 जो इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था वो मार्च 2020 में खेला था. तो बिल्कुल ही हट गए थे ये क्रिकेट से, लेकिन फिर इनको जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो वापस लेकर आया है. अच्छा जनाब, जो अभी ओडीआई सीरीज होने वाली है वेस्ट इंडीज के साथ हमारी, पाकिस्तान की मुल्तान के अंदर जिसको के रावलपिंडी से शिफ्ट किया है, उसके लिए आज जो है पीसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें के बाबर आजम से लोगों ने क्वेश्चन किए वहां पे. तो उन्होंने कहा जी कि वेस्ट इंडीज की टीम को इतना भी ईजन नहीं रहना चाहिए, इट कैन बी अ वेरी डेंजरस टीम. हाँ, हालांकि जो वेदर है वो हमारे हक में प्ले करेगा लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज होएगा. तो हमने यहां पे मुल्तान में पहले भी T20 मैचेस खेले हुए हैं और टेम्परेचर जो है लाहौर से भी 1-2 डिग्रीज यहां पे ज्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको इजी ले सकते हैं. और क्योंकि पाकिस्तान ने 12 गेम्स जो हैं अंडर हिज कैप्टेंसी खेले हैं, 6 इन्होंने विन किए हैं, 5 लूज किए हैं, 1 इनका टाई था. और वेस्ट इंडीज के साथ ये मैचेस जो हैं जून 8 से शुरू हो रहे हैं, तो 8, 10, 12 को ये मैचेस वहां पे होंगे, लेकिन वो शुरू 4 बजे कर रहे हैं क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है मुल्तान में. ठीक है. एंड जनाब, पाकिस्तान की लड़कियां भी कुछ पीछे नहीं है क्रिकेट में. श्रीलंका जो है उसको इन्होंने फिर से जो है जो 3 मैच ओडीआई की सीरीज है, पहले ओडीआई में इन्होंने हरा दिया, और इसमें जबरदस्त किस्म की बॉलिंग जो है गुलाम फातिमा ने की, और उन्होंने 4 for 21 एंड 10 ओवर जो है उन्होंने विकेट्स ली, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर सका फॉर 169, इन्होंने बनाए 170 for 2. और ये जो सारे मैचेस हो रहे हैं ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए जा रहे हैं, इसमें से जो टीमें फिर जो हैं वो 10 टीमें वो जो हैं सिलेक्ट होनी है, तो उसमें से भी बेस्ट वो आएंगी जाहिर है आगे. तो इन्होंने 4 जो है होम गेम्स खेलनी है और 4 अवे सीरीज खेलनी है, और फिर उसके बाद जो है ये 2025 में जाएंगी. जाहिर है सिर्फ ऊपर टॉप पे जो 4 टीमें होंगी तो फिर
हो जाएंगी.
हैं जी, तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें.
ये थी हमारी आज की खबरें, और आपको मालूम है कि बस अब से थोड़ी देर बाद, हाँ अगर आपको कोई बात करनी है भाई बस टाइम नहीं है, 42 तो हो गया है, 6:42, मगर फिर भी एक आध कॉल ले सकते हैं हम. 4166201778 हमारा फोन नंबर है, 4166201778 770. फोन करें साहब, और हम कोशिश करेंगे एक आध कॉल्स आपकी ले लें, मगर ये जो है टाइम बड़ा कीमती टाइम है, बड़ा कम टाइम है. 7 बजे से हम शुरू करेंगे अपना एक प्रोग्राम यहाँ पर. आज आपको पता है कि ओंटेरियो में इलेक्शंस हैं.
यस.
तो वो जो है 9 बजे हमारी पूरी की पूरी जो
प्रिडिक्शंस हम करना शुरू कर देंगे उस वक्त.
कर देंगे जी.
हाँ, बिल्कुल. लेकिन उससे पहले जरा हम थोड़ी सी एनालिसिस दे देंगे.
ठीक है जी. एक आध कॉल्स ले ले, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने स्पॉन्सर्स के पैगाम की जान. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
जी माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम. मसूद अर्ज कर रहा हूँ.
मसूद भाई फरमाइए
जी, कैसे मिजाज है? पहले भी बताए कौन जीत रहा है आज?
अभी मैं रेडियो पे आप
होल ओंटारियो की बात हो रही है.
होल ओंटारियो की, मगर मैं अभी अभी फिलहाल जिस जगह पे हम बैठे ना माइक पे, तो वहां पर हाँ अभी क्योंकि अभी 2 घंटे और बाकी
हो रही है. हाँ, 9 PM. हाँ, तो देखिए हमारा ताल्लुक है मिसरागढ़ सेंटर से।
अच्छा,
तो वी आर सपोर्टिंग सुमेरा मलिक एंड इज वेरी टाइट राइडिंग एंड आई एम जस्ट अपीलिंग टू माय वोटर इन दिस हु इज लिविंग इन द मिसरागढ़ सेंटर एट द फ्रॉम सिटी हॉल स्क्वायर वन अप टू ग्रेट वुडलैंड एंड फ्रॉम एग्लिंटन अप टू गंदार इफ एनी वेयर पीपल आर लिसनिंग जस्ट गो एंड वोट फॉर सुमेरा मलिक for liberal and we need our community representation in the provincial parliament.
मसूद भाई आपको मैंने बात तो करने दी मगर ये कि आज हम किसी एक कैंडिडेट या किसी एक पार्टी की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो उसका टाइम गुजर उसका टाइम गुजर चुका है। अगर दो दिन पहले आप कॉल करते तो नो प्रॉब्लम, मगर आज हम बात नहीं कर सकते। आप बात करते चले गए, मैंने उसको आपको इंटरप्ट नहीं किया,
मगर दूसरे कॉल
गो आउट एंड वोट। बहुत शुक्रिया मसूद भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी।
असल में हम ये फेवरेटिज्म दिखा नहीं सकते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मे द बेस्ट वन विन।
एग्जैक्टली,
है ना। तो इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये बरादरी और ये जो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स और ये अभी भी हमने पीछे नहीं छोड़ी है। हम अपने साथ लेके इधर आ गए हैं जी, जटा का मुंडा है इसनू वोट दो, ए जी पंजाबी है इसनू दो, ए जी साड़ी कुड़ी है इसनू वोट दो। ये चीजें जो है ना, ये अब आप पीछे छोड़ दें। हाँ ठीक है, हम चाहते हैं एज अ कम्युनिटी हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, लेकिन क्या वो लोग काबिल भी हैं कि नहीं?
देखिए कम्युनिटी का मतलब हमेशा हर इलेक्शन में मैं आपसे बात की है कि कम्युनिटी इज वे यू लिव।
एग्जैक्टली,
वहां पर काले पीले नीले हरे ब्राउन हर किस्म के लोग रहते हैं, तो वो कम्युनिटी आपकी।
Exactly.
और ये कहना कि सिर्फ ये पाकिस्तानी कम्युनिटी है या ये पंजाबी कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी है या श्रीलंकन कम्युनिटी है,
दैट
इज नॉट अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्योंकि हम कनाडा में इलेक्शन लड़ रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी,
है ना, कनाडा में।
ये है ना, हमारे लोगों ने कुछ ने ना माजिद भाई गेटोज बना लिए हैं ना।
हाँ।
कुछ इलाके बहुत ये इन्होंने जो है ना, बस ये सारे इधर जी ये रह रहे हैं तो हमने भी इधर रहना। हम जैसे जिस एरिया में हम रहते हैं सारे आसपास गोरे हैं, सब गोरे हैं।
सही।
हाँ, कोई वहां पे एक अद कोई ऐसे दूर पीछे करके कोई थोड़े कोई ब्लैक कम्युनिटी के कुछ लोग हैं या एक दो, अब वहां पे फ्रॉम लास्ट ईयर कुछ हमारे पंजाबी या कुछ और भी लोग आने लगे हैं, तो हमारी कम्युनिटी तो और
मगर अगेन मैं बताऊं आपको कि हमारी कम्युनिटी जो लोग करते हैं ना।
हाँ।
तो वो कम्युनिटी जो है
इट्स अ मिक्स कम्युनिटी।
यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन ये जगह है, तो यहाँ पर बेइंतहा लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं। तो आप इसको अगर अपनी एक दो ईंट की मस्जिद फिर बनानी है आपने, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन,
बिकॉज दीज आर अगेंस्ट कैनेडियन वैल्यूज,
100% अगेंस्ट कैनेडियन वैल्यूज। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
कौन बात कर रहे हैं सर? ओ आपकी तो लाइन कट गई भैया, ये आपकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ ये। हाँ, ये
वो बेगम साहब आ गई होंगी ना, डर के उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा कहीं मैं पैकड़ा ना जाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे तो उसने कहा आलू और टमाटर काटो।
हाँ।
और मैं इधर फोने कर रहा हूं, तो वो कहेगी ये तुम क्या कर रहे हो भाई?
एग्जैक्टली,
तो मेरा काम करो। exactly. ये फोने क्या कर रहे हो
भाई साहब? आप दोबारा कॉल कर लें, हम
अगर आपकी बेगम वहां से चली गई है तो
हम आपकी बेगम को नहीं बताएंगे।
हाँ, अगर चली गई है अपने रिस्क पे फोन करना है, हमारा नाम नहीं लेना कि वो मुझे कह रहे हैं फोन करो। हाँ, हमारा नाम नहीं लेना, बिल्कुल। हाँ, अपने रिस्क पे फोन करो और देख लो आसपास, अगर बेगम नहीं है फिर से कर।
तो मैं बात कर रहा था कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी के हमेशा आप ये देखें कि पहले तो सबसे पहले तो पार्टी देखें कि कौन सी पार्टी का जो उनका एजेंडा है, मैनिफेस्टो जो है, एजेंडा जो है उनका, वो क्या है, आइदर वो आपकी अपनी पर्सनालिटी को फिट करता है नहीं करता है। दूसरी बात जो है वो फिर जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं उसमें देखिए कौन आपको कैपेबल एंड आपको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है।
yeah.
उसको दें रिगार्डलेस ऑफ कहां करें। अगर ऐसा होने लगे तो यहां गोरे तो सारे मर जाएंगे बेचारे, ना वो गोरे तो सारे मर जाएंगे, कहेंगे यार हमारे पास इतनी मेजोरिटी है ही नहीं यहां पर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला।
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी महमूद बात कर रहा हूँ। आपने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बहुत मेरा तो बीवी के साथ झगड़ा करा दिया आपने।
नहीं महमूद भाई, आज बीवी से झगड़ा करने वाली चीज नहीं है सर।
नहीं तो बहरहाल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और बाजी शादियां जब आती हैं कहने के चार चार लगा देती हैं खबरों को, और मजा भी होता है और मजा भी करती हैं बहुत अच्छा तरीके से ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका ना, और खबरें भी आप सारी कवर करती हैं, सारी खबरें और हर एक की बहुत अच्छा करती है, मजा आता है आपकी खबरें सुन के,
बहुत शुक्रिया,
क्योंकि साथ में मजा भी होता है।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मजहब भाई के भाई,
भैया आपके
आपकी बेगम मेरी बहन है, आप मजहब भाई के भाई हैं
भाई साहब,
थैंक यू मजहब भाई के भाई साहब।
भाई साहब शाजियादी चेक, शाजियादी ने अपना चेक जो है आपके नाम पे भेज दिया है, तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है जी,
नहीं मैं अपनी बहन को भेजूंगी। जी जी बोले
जी जी, मैं क्या इलेक्शन आज आप रिजल्ट सुनाएंगे शाम को?
हाँ बिल्कुल, हम तो यहाँ पे सारी रात, हम तो आज अपने बोरिया बिस्तरे लेकर आए हुए हैं, हमने सरों ने आज नहीं सुना है।
नहीं ठीक है, इंशाल्लाह ताला सुनेंगे।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो,
हेलो
अस्सलाम वालेकुम जी,
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी फयाज अभी बात कर रहे हैं जी।
जी फयाज भाई फरमाइए।
एक तो जो मैडम साहब आई हैं, जब से आई हैं उन्होंने हमारी इंग्लिश ही खराब कर दी, लेके
आपकी
रन को रने ये पता नहीं कौन
से नॉलेज
हुई, और वोट को वोटा, वोट को वोटा,
वोटा वोटा कनाइफ।
ये पहले हम हर इंग्लिश वैसे इंप्रूव नहीं हो रही है पंजाबी में।
और सर देखें, गोरे से आप सिर्फ यही बदला ले सकते हैं, जो उसने 250 साल आप पे जुल्म ढाए हैं ना, आप गलत अंग्रेजी बोल के ये बदला ले सकते हैं।
वोटा दे रना खबर
देखिएगा। गिव अस, गिव अस टू इयर्स प्रयास भाई, दो साल के बाद यहाँ की डिक्शनरी बदल जाएगी।
और गोरे भी पंजाबी बोलेंगे।
सही कह रहे वो, अच्छा वो जो अभी वो दो दिन से बैच चल रही है, वो हमारे जो सीओ साहब है आल्फा साहब, वो इनसे कह रही है कि जी वो 56 को दो क्या कहते हैं जी, उसमें उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और वो क्या कैसे क्या इंग्लिश में उसको 56 को दो को?
नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं उसको?
हम भी 56 कदू कहते हैं, मैं भी सुनी थी, उनकी शहर गई हूँ मैं।
बॉटल गोल्ड आपने ये अंग्रेजी का लफ्ज नहीं सीखना, आपने गोरे को जाके बोलना है दिस इज कॉल्ड छपन कदू।
अच्छा अच्छा अच्छा, एक आप माशाल्लाह इतने वो हैं, आप मुझे बता दें, वो जो आपको तो पता है ना कुड़क मुर्गी क्या होती है, पता है ना कुड़क मुर्गी?
नहीं मुझे नहीं पता।
कुड़क मुर्गी,
कुड़क मुर्गी
जो
मुर्गी होती है जो अंडों पे बैठे, जो एक से पहले बैठती
है ना, अच्छा अंडों पे बैठती है सेकने वाली, उसको कुड़क मुर्गी कहते हैं।
पंजाब में तो आम कहते हैं ना, नहीं पता आपको क्या?
नहीं नहीं मुझे नहीं पता।
नहीं जैसे जैसे 5-10 अंडे देने के बाद जब वो बैठ जाती है अंडे उस पे करने के लिए, सेजने के लिए अंडे को,
अच्छा
बिठाते हैं उसको ना, तो उसमें कहते ना वो उसकी आवाज भी ऐसे कुक कुक करती रहती है ना, चलते फिरते अपने पर फैला के ना, तो उसे कहते कुड़क मुर्गी कहते हैं।
अच्छा
उसकी उसको उसकी इंग्लिश ही पता चली आज तक यही।
शादिया मलिक शायद आप कह सकते हैं।
ये हमने ऑफिस में तो इस्तेमाल किया है, बट जैसे कुछ सीनियर हमारी ऑफिस होती थी उसे हम कहते कुड़क मुर्गी। चले
मैंने माजद भाई कहा है ना कि ये कौम बड़ी जो है ना ये जुगाड़ू है, ये देखें जरा आप,
देखें कुड़क मुर्गी को, कुड़क मुर्गी को कहते हैं इंग्लिश में एंग्री चिकन।
अच्छा वो उस पर आ रही मैं बात पे, कि वो जो पाकिस्तान में जो अभी जब इमरान खान ने जाने से पहले खुशखबरी दी थी ब्रिटिश खान ने, जिसमें कनाडा की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, वो जो रेकॉर्ड डेक का मसला था वो क्लियर हुआ था कि जी वो ना उन्होंने हामी भर ली और वो जो पेनल्टी थी माफ हो गई है, ऐसा कुछ था ना प्रोसेस हुआ था
जी, जी, जी।
तो वो उन्होंने काम शुरू किया नहीं किया अगर सोना निकल,
उनकी अल्लाह की तौर वो कभी नहीं जाएंगे पाकिस्तान।
नहीं वो नहीं, जब इमरान खान जाने से पहले ना किसी ने उन्होंने कुछ कभी सुनाई थी कि ये अभी वो जो है वो जो
फैसला हो गया था उसका,
फैसला उसका हो गया था
सर, तो अभी 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 तो आप वो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है, तो कैसे काम शुरू हुए?
तो उनसे कहे थोड़ा सोना निकाल के दें हमें, ताकि हमारी कुछ तो खजाने में पैसा आए,
वो दे दिला के मामला
तय हो गया, वो तय हो गया।
56 कद्दू को कहते हैं 56 स्क्वाश। सही है सर,
इसका वैसे पूछ रहे थे किसी से कि वैसे मुझे
कद्दू को बॉटल गोल्ड कहते हैं, लेकिन अब 56 कद्दू को क्या कहते हैं आई डोंट नो, बेचारे गोरे को तो पता भी नहीं होगा कि कोई 56 कद्दू को एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में।
खाने की चीज भी है या नहीं ये भी बता।
हाँ इनको बस ब्रेड ते मिल्क ते बटर और चीज ही पता है, इनको क्या पता है जो चीजें हमारे मुल्क में है।
पिज्जा और बन क्राफ्ट के अलावा क्या पता है,
पिज्जा ज्यादा से ज्यादा पता चल गया इनको।
वैसे किसी किसी और सामने इनको पता हो कि कुड़क मुर्गियों के क्या क्या था इंग्लिश में, तो शायद बता दे सकते हैं, नॉलेज हो जाएगी।
नहीं नॉलेज नहीं होता सर, नॉलेज
नॉलेज नॉलेज सही कह रही
है, नॉलेज
यू आर राइट आर आई जी एच
नहीं आप गलत बोल रहे हैं, यू आर राइट आर आई डी वाला ई नहीं बोलना, आप कहते हैं यू आर रैट रैट बोलना है, यू आर कैट रैट।
बहुत शुक्रिया सर,
कीप इट अप,
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी साहब। थोड़ी देर बाद फिर वापस आएंगे हम, और आज तो हमने रात को बहुत देर तक आपके साथ गुजारनी है, तो आप खाना शाना लेके आ जाएं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे, जहां भी बैठे हुए अपने ऑफिस में, घर में, इधर उधर जहां भी बैठे हुए आप हमारे साथ रहें। और अगर आप को रेडियो नहीं तो आप टीवी पे देखें हमें,
यस टीवी और पे अगर हम आपको ऐसे पड़े हुए नजर आए
हाँ, तो हमें जगा दीजिएगा,
तो आपको पता चल जाना चाहिए कि रात का बहुत पहर हो गया और ये जालम मैनेजमेंट वाले हमको जाने नहीं दे रहे
हाँ, हाँ।
और बंदे इधर पुठे पड़े हुए हैं ऐसे
तो साहब आपने कहीं नहीं जाना है, आपने हमारे साथ रहना है, और अभी हमारी पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम हमारी पहुंच जाएगी इधर हाँ। और पूरी टीम के साथ हम टाइम गुजारेंगे, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हाँ। होगा ये,
क्योंकि भाई आपने नया लव से कोर्स सीखा
जी जी,
मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप बोलते रहते हैं, मैनेजमेंट नहीं होता मैनेजमेंट होता है,
अच्छा मैनेजमेंट होता है
मैनेजमेंट सीखे देखें, मेरी जो नॉलेज है ना उससे आप थोड़ा फायदा उठा लें,
मैं ये
इतने बड़े हो गए हैं,
मैं हाँ। ना रोजाना कोशिश कर रहा हूँ
हाँ बिल्कुल तो कोशिश
करें, एक एक चीज देखे आप, मैं 56 कद्दू सोचा
हाँ बिल्कुल, देखें कितने देखें जीनियस होते जा रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं जब से आया हूँ यहाँ पर मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया
हो गए ना हाँ, मेरे साथ मैं क्या सी ना साढ़े नाल रोगे ऐश करोगे,
ऐश कर रहे हैं
हाँ, देखो जरा आपकी कितनी कनॉलेज में मैंने इजाफा किया
साहब 6:55 और 50 सेकंड लीजिए साहब, 6:56 हो गए, हम जाएंगे अपने टॉप ऑफ द आवर पैगामात की जानिब, सुनिए इनको, उसके बाद फौरी तौर पर वापस आएंगे हम, और आके जनाब यारी आपकी मुलाकातें लोगों से करवाएंगे जो एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया की सियासत पे एक्सपर्ट्स हैं, हम पूरी दुनिया की भी बात करेंगे, खास तौर से ओंटेरियो की इलेक्शन की बात करेंगे, और ये सिलसिला ऐसी जारी रहेगा। टीवी पे आप हमें बहुत देर तक देखते रहेंगे, 9 बजे तो यहां पर हम रेडियो खत्म कर देंगे, मगर उसके बाद टीवी पे हम रहेंगे आपके साथ, और टीवी पे इसलिए आइएगा कि उस वक्त आपको सामने रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे यहां के ओंटेरियो के इलेक्शंस की। तो चलिए साहब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है। शायद जी आप भी हमारे साथ यहीं बैठी हैं कहीं, अभी आज तो थैंक यू नहीं करूंगा क्योंकि आप तो हमारे साथ
हैं, खबरों के लिए थैंक यू बोला ना, मैं तो वो जान छोड़िया ही करो तुम, जड़ा मतलब
खबरें खत्म हो गई है,
खबरें मतलब और कहानियां सुनी हैं, इतनी कहानियां सुनाइयां, कल के लिए भी कोई कहानी रहने दो माज भाई, अब ये इलेक्शन का टाइम चलने दो, अब
चलो सही है हो गया जी
हाँ, उसमें अब मेरी आपके साथ मुलाकात होगी, जरा ठंडा ठंडा पानी शानी पियो,
अच्छा
इतनी तुसी इतने गर्मी की थी, ये है जी इलेक्शन दी,
इलेक्शन दी गर्मी होगी,
गर्मी है बड़ी गर्मी है, ठीक है,
इस पास पैगाबाद विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, डोंट यू गो अवे,
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर,
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब, स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉन, हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191, 416-433-9191,
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-836-6974
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 5 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 9 ਵਜੇ ਉਪਰੰਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। 12 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਟਾਲ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 4